जिस दिन नारद ऋषि द्वारका में पहुंचे और महाराज उग्रसेन की सभा में उपस्थित हुए, उग्रसेन और सब जादवों की बातों को सुनकर के उद्धव जी के उत्कर्ष की बात सुनकर, उनकी महिमा को सुनकर नारद जी प्रेम में बड़े व्याकुल हो और उद्धव जी का स्मरण करते हुए, उनकी खोज करते हुए रुक्मिणी के राजभवन में पधारे। यहाँ तक तो मैंने बताया, आई टोल्ड दैट नारद कैंप इन द कोर्ट ऑफ इन द काउंसिल ऑफ उग्रसेन एंड ही हर्ड अबाउट द ग्लोरीज ऑफ उद्धव एंड देन ही क्विकली रन अवे टू मीट उद्धव एंड ही कैम इन द रॉयल पैलेस ऑफ रूपी वेयर कृष्ण वाज। जब वहां पर पहुंचे तो देखा क्या, उद्धव जी, बलदेव जी, रुक्मिणी, रोहिणी मैया, सत्यभामा इत्यादि बहुत से लोग वहां पर थे और सभी लोग बड़े उदास थे क्योंकि कृष्ण अभी देर तक सो रहे हैं, किसी मनोव्यथा से। इसके बाद में नारद जी को देख करके वो सभी लोग उनके आंसुओं को पोंछा और पोंछ कर महाराज थोड़ा सा स्थिर होइए और बतलाइए किस लिए आपकी यह दशा है। उन्होंने स्थिर हो करने के बाद में कहा, मुझे उद्धव जी से मिला दो अथवा उनकी चरण रेणु से हमको स्पर्श करा, इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। उद्धव जी वहीं बैठ रहे हैं किंतु वो देख नहीं रहे। यू शुड नॉट डाउन। इसलिए जबकि उद्धव जी वहां पर बैठे हैं, देखा नहीं, कहने लगे ये बातें, तो वहीं पर उद्धव जी थे, उनके भावों को समझ गए। क्या भाव था? भावों को समझ गए किस लिए ये आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, नारद जी का उद्देश्य क्या था इस जगत में, यह घोषणा करनी थी कि कृष्ण के कृपा पात्रों में सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, किसी को प्रकाशित करना चाहते थे कौन, कृष्ण। और उसको जान करके नारद जी ने भूमिका बनाई और प्रयाग से यहाँ तक पहुंचे। अब उसी की अब परिसमाप्ति है, अभी उन गोपियों की महिमाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। गोपियां कैसी थी, नंद बाबा कैसे थे, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा अद्भुत था, इसी की भूमिका यहाँ पर बन रही है, नारद जी वहां पर बना रहे हैं। नारद जी ने कहा कि प्राचीन और अर्वाचीन अथवा नए जितने में भक्त हैं प्रभु के अनुग्रह पात्र हैं उनमें उद्धव श्रेष्ठ। क्यों श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है, सनातन गोस्वामी अपनी व्याख्या में यही इसी को बतला रहे हैं। क्योंकि कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी को अपनी विभूति बतलाई है, भक्तों में मैं हूं ये भी कल बतलाया था। ओ बड़े विस्मय की बात है, विस्मय की क्या बात है, प्राचीन और आधुनिक जितने भी भक्त हैं कृष्ण के अनुग्रह पात्र हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है, उद्धव हमसे कम नहीं है, नंद न उद्धव मन न्यूनम अपि, उद्धव से कम नहीं है। इसे श्लोक में बतला रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजोगी न शंकर न च संकर्षण न श्री एव आत्मा च यथा भवान। क्या हे उद्धव, तुम भक्त होने के कारण जिस प्रकार से हमारे प्रिय हो उस प्रकार से मेरे पुत्र ब्रह्मा और मेरे एक स्वरूप शंकर, भ्राता शंकर संग, भार्या रमा देवी और यहां तक कि अपना यह जो मेरा स्वरूप है वो भी उतना प्रिय नहीं जितना है उसको, तो यहां पर भार्या यदि कृष्ण कराएं तो भार्या किसको लेंगे, इनको राधा जी मत लेना, राधा जी से उद्धव जी से नहीं हो सकते, रुक्मिणी सप्तभामा से किसी प्रकार से हो सकते, इसलिए लक्ष्मी जी का ही यहां पर संकोच। और किस रूप में कहें, नारायण के रूप में कह रहे, इसलिए अपना स्वरूप में मेरा यह है उतना प्रिय नहीं जितना उद्धव, किस लिए, भक्त होने के कारण, और वो भी भक्त कैसा, परम भागवत उसमें भी बतलाया गया, युधिष्ठिर भी भागवत है, उद्धव भी भागवत है, हरिदास और गिरिराज गोवर्धन है, अभी गिरिराज जी को मत छुओ नीचे ही चलो, ये दोनों क्या है, हरिदास, उद्धव को हरिदास तर बतलाया, तम नहीं। भगवत वचनानी एवं पथितानी पुरातन तस्य सौभाग्य संदोहम महिमना त्यजन्ते, यह उद्धव
सौभाग्य राशि की घनीभूत मूर्ति स्वरूप है और भगवान के मुख से ही उनके संबंध में पुराणों में लिखे गए बहुत से वचन हैं। भगवान स्वयं रूप में उद्धव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। इसलिए कृष्णा की कृपा उद्धव जी के प्रति बहुत अद्भुत विचित्र है। उद्धव जी पर कितनी कृपा है इसी से समझो, जब ब्रज में भेजने वाला कोई मथुरा का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको ब्रज में गोपियों के यहाँ पर भेज सके। इसलिए एकमात्र अधूरा अभी अपरिपक्व किंतु योग्य, उनके अतिरिक्त अब कोई नहीं है तो क्या करेंगे, उन्हीं को भेजेंगे। इसलिए इसके लिए माता पिता के संतना और गोपियों की संतना के लिए, इसी से हम समझ सकते हैं। हे ब्रजवासियों, जादुओं नदीकरण, मैं उनके जो जादुओं ने हमसे कहा उस सभा में, उनको अपने कानों से सुनकर, सुनने से हमारा हृदय को उन्होंने चोरी कर दिया वो कथाएं। कैसे? हमारा धैर्य जो है वो छूट गया। उनकी महिमा ने हमारे हृदय में घुस कर और हमारे हृदय को चुरा लिया। मतलब क्या? उद्धव जी की महिमा इतनी अधिक है कि उसके सुनने से उनका हृदय उन्होंने चुरा लिया, अर्थात हृदय को आकर्षण कर दिया।
They washed the face of Narad with water, and they asked, "Oh Narad, what happened to you? How come you are in such an ecstatic state?" So Sri Narad Muni said, "I just want one thing. I want to meet with Paramatma Uddhav and to get his foot dust." So Uddhav, he could understand what is the mood of Narad, because Narad's goal was to find who is the main object of the mercy, Sri Krishna. So Uddhav could understand why Narad had come and what his goal was. Krishna himself wishes that everybody should know who is the greatest recipient of the mercy of Krishna and how the flame of the Vrijavasis is wonderful and most astonishing. So Narad said to everyone who is present, "Oh yes, Uddhav is the best, because Srimad Bhagavatam, Krishna with his own mouth has glorified him so much, and Krishna has said, of all the devotees, I am Uddhav." So Narad is saying, "He is not less than me." And Krishna himself says in Bhagavatam, "Oh Uddhav, you are very dear to me, Natata Priyatam. You are more dear to me than Brahma. You are more dear to me than my Ekshwarupa Mahadev. You are more dear to me than my brother and expansion of Sankarshan. And you are more dear to me than Sri." So Sri here, not meaning Srimani Radhika, of course, here is meaning Rukmini, Lakshmi. "Oh Uddhav, you are so dear to me. Even my own body is not as dear to me as you are." So there are three Haridas, three Bhagavans. One is Sri Yudhisthira Maharaj, and here is Uddhav, he is also Haridas. But here we're not talking about Vrijavasi or Govardhan. "Oh Uddhav," Narad continued, "you are so great that Krishna himself has continuously described your glories, both in Srimad Bhagavatam and in the other different Puranas. Because of Uddhav's extraordinary qualification, that's why Krishna chose him and only him to go to Vrindavan, because he was so qualified and because he was very right. Krishna sent him to Vrindavan to try to pacify Nanda Yasoda and the other gopis."
नारद जी की बातों को सुनकर, नारद जी के भावों को देखकर उद्धव जी उनके भावों को समझ गए। अब परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं अपनी मैया से, मैया नारद जी जब उद्धव जी के संबंध में ऐसी बातें कहीं तो उद्धव जी बड़े लज्जित हो गए और बड़े आदर के साथ में बहुत जल्दी से द्रुत गति से उठकर और नारद जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया और अपने गोदी में रखकर उसे आलिंगन किया और उनके भावों को, हृदगत भावों को समझकर, क्या वो भगवान हृदगत भाव कि भगवान चाहते हैं कि हमारा जो संसार में सबसे अधिक प्रिय है, प्रिय उसकी घोषणा की जाए तो अच्छा है। और नारद जी उसको समझ करके प्रयाग से यहां तक अभी तक यात्रा किए हुए हैं, किस लिए? कृष्ण की इच्छा को पूर्ति के लिए कि हम ये घोषणा करें कि उनका सबसे अधिक कौन प्रिय है। क्या वे नहीं जानते कि गोप और गोपियां ब्रजवासी उनके अधिक प्रिय हैं? राम जी जानते हैं, किंतु अब ऋषि समाज में इसको और लोक समाज में इसकी घोषणा कर दी और सबकी प्रतीति हो, इसलिए उनके भावों को समझ करके उद्धव जी प्रेम में विवश हो उठे। तो नारद जी कैसे भक्त हैं, जो मैं नहीं कर सकता ये इसे भी अधिक हमारे ये गुरु हैं। सचमुच में नारद जी उद्धव जी के भी गुरु हैं। ये नारद जी ब्रज में कौन सखा मधुमंगल, ये मधुमंगल है और उद्धव जी उद्धव ही हैं मथुरा के, इनके ये मधुमंगल हैं। कृष्ण की समस्त रहस्य लीलाओं में इनका अधिकार है, सुबल जी का और इनका, प्रिय नर्म सखाओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उनके इस भाव को जानकर ये हमारे ये गुरु हैं इस भाव में विवश होकर के रोने लग गए। क्यों रोने लगे? आदमी दुख से रोता है, सुख में भी रोता है, रोने किस लिए लग गए? उनको स्मृति हुई, जब मैं ब्रज में गया वहां से लौटा हूं, अब मुझको ये प्रतीति हुई, अनुभव हुई है गोपियों का प्रेम कैसा है, अथाह अनंत समुद्र है तेरे, और मैं उसमें क्या हूं, एक कण हूं। और हमारा जो अभिमान था जो हमसे बढ़कर के भगवान का और कोई प्रिय नहीं है, ये चूर्ण विचूर्ण हो गया ब्रज में जाने से। ब्रज में नहीं जाता तो गोपियों का यह भाव नहीं, प्रेम में भी विवश होकर के कैसे गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं, इसलिए वो भी रोदन कर रहे हैं। और भी क्या, जब स्मृति हुई उन चीजों की, गोपियों के भावों की, हृदय की बात है, विशेष करके राधिका इत्यादि, तो वो कहीं वैसा ही दुख हमको न हो या दुख के से भाराक्रांत होकर के ये कृष्ण जाके में नहीं रहे, इसलिए वो उद्धव जी भी बड़े डकार डकार करके रोने लगे। जब रोने लगे तब बलदेव जी और दूसरे लोगों ने उद्धव जी को धैर्य बंधाया और तब फिर उद्धव जी जब कुछ शांत हुए तो उनको सात्विक मात्सर्य हुआ। इसके प्रति नारद के प्रति नारद की ऐसी महिमा जो हमारे लिए संभव नहीं, इसलिए मात्सर्य भाव जैसे सत्यभामा और रुक्मिणी का परस्पर कुछ मात्सर्य भाव, तरुणी जी गंभीर, रुक्मिणी जी गंभीर हैं और सत्यभामा जी थोड़ी सी चंचल है, चंचल स्वभाव, तो उसमें मात्सर्य भाव कुछ है। श्रीमती राधिका और चंद्रावली में मात्सर्य भाव है, तो ये कह रहे हैं ये भी मात्सर्य में, ये तो दुख की बात है, इनमें कैसे हुई ये मात्सर्य भावना? मात्सर्य माने क्या, जलना, किसी के सुख में
जिसके किसी के उत्कर्ष को सुनकर के जलना हृदय में जलन होती है, ये तो जगत में ही होती है, वहां तो होती नहीं है, साधकों में भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सात्विक, सात्विक माने सत्व से उत्पन्न। ये सत्व क्या है? सत्व किसको कहते हैं? शुद्ध सत्व। भगवान के परिकरों में वो सत्व है, उनके अनुगत्य में चिंतन करने से, भजन करने से वो शुद्ध सत्व उनमें से बिजली की भांति यहाँ आविर्भूत होता है उनके हृदय में। वो क्या कहते हैं, जैसे लोहे में आग तदात, वो तदात्म हो गई, तदात्म में वही तदात्म हो गई मार्सज्ज से, अर्थात इनके हृदय में उत्पन्न हुई ईर्ष्या। जी नारद जी कैसे स्वभाग्यवान है, जिसको वो जानते हैं मैं नहीं जानता। अच्छा मार्सज्ज और मार्सज्ज भाव से माने क्या, मुनि जी को सावधान करने, सावधान इसलिए सावधान। ये टीका मेरी विस्तृत रूप से आलोचना की गई है। मैंने अभी बतलाया नारद जी की प्रेम संपत्ति वैभव को गोपियों के तदीय प्रेम संपत्ति वैभव, गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग है पागलों के में, कृष्ण के प्रेम में दिव्योन्माद उनको हो जाता है, इससे भी अधिक महाभाव उत्पन्न हो जाता है, अंत संत बकने लगते, इसी को कहते हैं दिव्योन्माद होने लगता है। क्या दिव्योन्माद होने लगता है, इस भाव को स्मरण करके उद्धव जी धैर्य नहीं धर सके और व्याकुल और विवश होकर के दीन भाव से रोदन करने लगे। उद्धव गोपियों का की दशा स्मरण कर, कृष्ण रोने लगते हैं तो और लोगों की तो बात, स्वयं कृष्ण रोने लगते हैं। यहां पर प्रेम संपत्ति वैभव कहने से क्या, गोपियों की आरती, नंद बाबा की आरती, आरती को छिपाने के लिए, आरती को दूर करने के लिए एकांत वन में जाते हैं, किंतु वहां पर और भी आरती बढ़ जाती है, गोपियों की भी आरती ऐसे ही बढ़ जाती है। आरती को दबाने के लिए, संवरण करने के लिए जमुना के घाटों में जाए और वहां कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके गोपियों की और भी विवश, इनको कहीं भी दिन रात चैन नहीं। जैसे महाप्रभु दिन में तो किसी प्रकार से बिता लेते गोपियों को और रात में उनकी पित्ती नहीं थी, ऐसे गोपियों की स्थिति, दिन किसी प्रकार से सखियों के साथ में मन बहल करके कुछ हो जाता, किंतु रात आती ही जितनी ही रात अधिक बढ़ती जाती है और उनका विरह का बुखार और तीव्र गति से बढ़ता है, अथवा श्वेद कम पुलक आदि सात्विक विकार प्रेम संपत्ति गोपियों को जो अथवा अर्थ कर रहे हैं, गोपियों को कृष्ण के विरह में या मिलन की स्मृति जब विरह में उनकी होती है, क्या तात्पर्य, विरह में कृष्ण की स्मृति अधिक होती है, इसलिए विरह में कृष्ण की तीव्र अनुभूति की अनुभूति जब होने लगती है तब श्वेद कम पुलक आदि अष्ट सात्विक भावों से जो उनकी प्रेम संपत्ति होती है यह देखकर, अथवा विस्तार वैभव गोपियों की और जो स्थितियां हैं उनको विशेष रूप से स्मरण करके जो गए थे देखा, भ्रमर गीत में और देखा, भ्रमर गीत के समय में कैसे वो पागल होकर कभी क्रोध होता है, कभी क्षोभ होता है, कभी वो क्या दस अवस्थाएं
दस श्लोक भागवत में ब्रह्म की कहने दस
जल्प
जल्प अजल्प सुजल्प प्रजल्प विजल्प
ऐसी राधिका जी गोपियों के स्मरण से भावों के स्मरण से हृदय में प्रेम राशि आविर्भूत हुई और वे दीन भाव से रोदन करने लगे। अभी भी कृष्ण की लीलाओं का यदि स्मरण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी घर छोड़ करके जा रहे हैं, सची मैया जड़वत हो गई है काष्ठ के समान, महाप्रभु जी ने प्रणाम किया वो रोक न सकी न बोल सकी न कुछ, लकड़ी के समान हो गई और महाप्रभु जी परिक्रमा करके चल दिया कूद गए उसने। विष्णु प्रिया को कैसी दुर्वस्था में छोड़ करके गए उसको सुन करके पत्थर भी पिघल जाता है। गोपियों का प्रेम और अधिक इस विष्णु प्रिया से भी अधिक उसको स्मरण करके रोदन करने लगे। थोड़ी देर के बाद भी बलराम जी और नारद जी के जत्न से उन्होंने धारण किया। पीछे नारद जी के प्रति मात्सर्य बसता जो मैंने बतलाया उनको सावधान करते कहने लगे मात्सर्य कैसा स्वार्थिक भाव से, इसलिए ये दुखपूर्ण नहीं है। क्या उन्होंने वर्णन किया ये गोपियों का गोपियों की महिमा है, साधारण लोगों को इसको पता है।
So, hearing all this, what Narad spoke, what we could understand the inner intention of Narad and then of the inner intention of Krishna himself. So Pritchett said to his mother, oh, when Uddhav heard all this of his own glory spoken by Narad, Uddhav became ashamed and immediately stood up and caught both the feet of Sri Narad Muni very tightly. So Narad immediately reached down and picked up Uddhav and embraced him very tightly. So Krishna wondered that my dearest and dearest devotee should be revealed and glorified. So in order to fulfill the inner desire of Krishna himself, that is why Narad traveled everywhere from Prayag to Jagannath Puri to Brahmaloka. Now to walk up. So we should not think, what, Narad doesn't understand that from the beginning that the Brijvasis are in the highest position? Oh, he understands everything very nicely, but he also wants to reveal the glories of the other devotees. So in one sense, we should also understand that why Buddha clasped the feet of Narad, because Narad is, in one sense, the guru of Buddha, because Narad is actually Mother Bhanga. Amongst Krishna's nearest Prinam Sakhi, Subala Madhumandal. Madhumandal knows all the secret pastimes of Sri Krishna himself. So, Uddhav, when he heard of the glorification of himself, Uddhav deeply remembered, oh, the glories of the Brijvasis, and he began to weep. Was it weeping in sadness and or in great jubilation? That we cannot say. Uddhav was remembering, oh, the friend of the Brijvasis, like Nanda and Yasoda, and especially the gopis, is like an unlimited ocean with no shore. And who am I? I am like nothing. And when I went to Vrindavan, my false ego was completely crushed there. Uddhav was remembering how everyone, the Brijvasis, especially the gopis, were weeping for Krishna day and night. So remembering the mood of the gopis, Uddhav was also weeping. Uddhav was thinking, oh, how Krishna can stay here in Dwarka when they had so much prem for him in Vrindavan. So Balaram and the other Dwarkavasis, they stood up and somehow they managed to pacify Uddhav. So Uddhav, Balaram and others had some sacred masajava towards Narada. Uddhav had Satvik Matsarya Bhav towards Narada. Matsarya means envy. And Satvik Matsarya means completely devoid of the three modes of nature, a pure transformation of Krishna prem, that is Satvik Matsarya Bhav. Just like we see in the arguments between Satyabhama and Rukmini, or between Srimati Radhika and Chandra. Chandravali. We should not think that this is just an ordinary thing like we see in this world. No, we should understand it is a manifestation of Sudasattva. Sudasattva is pure spiritual existence. And when we chant under the guidance of Hari Guru and Vaishnava, then that sattvic bhava enters into our heart, then we can understand these things. So this is called Tarigatma bhava. Just like when iron is placed into fire, fire attains the same qualities of fire.
So,
Uru was remembering how much Anurag the gopis had to Krishna. So when Uru remembered all this, Uru could not be very peaceful at all. He remembered especially the gopis and Radharani, how when Uru came, she was weeping and chanting the verses of Ramagir. Sometimes she reached the state of Divyamara, divine madness, and sometimes even more than that, after the different stages of Mahabharata. So when Uddhava remembered all these things, Uddhava was also weeping. The one to speak of Uddhava and all the Dwarkavasis, even Krishna himself was crying, remembering this. So the gopis have so much prem sampati vaibhav. That means they have so much wealth and opulence of Krishna prem. So in order to keep this hidden from the general people, the gopis went to the forest, and especially to the banks of Yamuna, and there in a solitary place, day and night, they would remember the pastimes and the loving dealings that they had with Krishna. Remembering Krishna day and night, they would weep, crying and rolling on the ground. Just like Chaitanya Mahaprabhu himself, when he came to this world, even nighttime he would not rest, he would remember all these moods of the gopis and weep bitterly. So when, especially in the gopis, when they feel so much separation, that time they remember the different pastimes of meeting that they had with Krishna. That time in Viraha, in separation, so much more remembrance of Krishna will come. Or how we met with him, how we used to talk. And in this separation mood, after Sattvic Bhavs, the eight different transformations of spiritual ecstasy manifest in the body with Vasis. That time Buddha was remembering how Radharani sang the Uruki, and she tasted different types of anger, jealousy, humility, 10 different types. So also how Mahaprabhu left everything. He left Sachimara standing like a statue. He did Parakram. Sachimara could not even speak. He did Dandavat Pranam to her and left her forever. How Vishnu Priya, what an unfortunate situation she was in, weeping bitterly. But the gopis had even more separation and more love for Krishna than Vishnu Priya had towards Mahaprabhu.
Uddhava ji, कह रहे हैं नारद जी को चरणों को पकड़ करके आलिंगन करके उनके भावों को समझने के बाद वे बोल रहे हैं हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले सत्यवादी श्रेष्ठ सत्यवादी हरिश्चंद्र उसके बाद में युधिष्ठिर वो लौकिक ये परमार्थ थे उनसे भी श्रेष्ठ महामुनि अर्थात व्यास इत्यादि जो मुनि हैं सुखदेव गोस्वामी जो मुनि हैं उनके भी गुरु हे प्रभो आप भगवत भक्ति मार्ग के आदि प्रवर्तक गुरु हैं नारद जी भक्ति के प्रवर्तक आदि गुरु हैं यह आपने बोलिया छे वो सब सत्य यह आपने कहा हमारे लिए वो ठीक है और उसके अपेक्षा भी मैं कुछ और भी हूं जो आपने अभी वर्णन किया अभी वर्णन करना जो आपका बाकी रह गया उससे भी अधिक मेरी महिमा है मैं जानता हूं जो आपने वर्णन नहीं किया गुप्त रखा है जानते हैं किंतु गुप्त रखा है जो कुछ कहा उसे भी यदि हमें वो सब महिमा वर्तमान है मैं जानता हूं और इस बात को मैं तो जानता ही हूं उद्धव आदि सब ये कुकृष्ण इत्यादि जादव हैं ये लोग भी जानते हैं कैसी मेरी महिमा है किंतु मैं ब्रज में गया और जो देखा हमारा यह घमंड चूर्ण विचूर्ण हो गया कि मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ हूँ, मैं समझता था। मैं तो वहां ब्रज में गया, उनके स्कूल में एडमिशन भी मेरा नहीं हो सका, उन्होंने नहीं लिया, इतना योग्य नहीं था। यहाँ पर राधिका जी प्रिंसिपल हैं, ललिता विशाखा जी प्रोफेसर है, एक एक विषय के रीडर और डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वहां पर मेरा नंबर इतना कम था उस समय प्रेम में, जो हम उसमें हमारा एडमिशन उन लोगों ने मिली, केवल स्कूल को घूम करके मैं चलाया, उसकी जो कुछ हवा लगी उसी से उनकी महिमा को हम जो अनुभव प्राप्त, उसके द्वारा हमारा यह महासौभाग्य का गर्व चूर्ण विचूर्ण होकर के खत्म हो गया। और उसी अनुभव से जो कि हमने अनुभव किया, उसके द्वारा मैंने कृष्ण और उनके कृपा प्रसाद और उनके प्रेम तथा उनके प्रेम भाजन जो कृपा पात्र हैं, कौन, ब्रज के गोप गोप, इससे बढ़कर के और कोई नहीं, उनकी महिमा माधुरी को मैं कुछ अवगत हुआ हूं, वो भी पूरा नहीं, कितना कण मात्र। मैं ब्रजवासियों के दर्शन से मैं धन्य हो गया, विरहीन में महान, महान में अनुग्रह, आपने ब्रज में मुझे भेजा, मैं महा सौभाग्यशाली। और वहां जाकर के गोपियों से कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के विरह को देख करके आज धन्य हो गया, विरहीन महा, आज मैं महाभागा हो गया, महाभागवान हो गया। और भी उद्धव जी ने क्या किया, आगे वर्णन करें, इसलिए प्रभु ने हमें ब्रज में भेज करके हमारे प्रति बहु कृपा की है, इसलिए मैं समझता हूं कि भगवान का मैं, कृष्ण का मैं बहुत बड़ा भारी कृपा पात्र हूं। ये गोपियों से हमारा संवाद हुआ, गोपियों को मैं गया देखने, इसलिए आपको प्रभु का नितांत कृपा पात्र जान करके, ये आप भगवान के कृपा पात्र में से एक हैं, तर हैं तब तो गोपियां और ब्रज के लोग, ऐसा समझ करके जो उनके भावों को समझने वाले हैं, इसलिए आनंद में मग्न होकर के रोदन कर रहा।
गायन गायन जब अमिला सीता
तत्तो अनुष्ठितं तत् सद्धेयं सुविदितं इतः शक्यते अन्न भक्तं नत्वा नत्वा मुदिमरमया प्रार्थसे काकुभिः स्तन तत्तत् वृत्तश्रवण वसत् रसनत संश्रयेथा विराम। मैं ब्रज में गया, आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। जब तक वहां था आनंद के समुद्र में डूब रहा, और उस समय गोपियों के इस प्रेम संपत्ति को अनुभव कर, उनकी विरह आरती देखकर मैं कृतार्थ हो करके जो बार बार मैंने वहां पर उनके महिमा का गुणगान किया था, उससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या उन्होंने कहा था? एता परम अनुभवो भूत गोप बद्धो गोविंद एव अखिलात्म निरूढ भावा तद भवति वो मुनयो वयं च कथा रसस। उस समय मैंने कहा था कि इस पृथ्वी में, पृथ्वी धन्य है क्योंकि ब्रज है, अब गोप और ब्रज इसलिए धन्य है कि उसमें कौन है? ये गोप वर्तमान, ये गोपियां हैं, इसलिए ये ब्रज धन्य है। और कृष्ण के प्रति वह ऐसा अद्भुत प्रेम होने से ये ब्रज की गोपियां ही महा महा धन्य है। क्या जब गोविंद एव निखिलात्मनि रूप भावा, अखिलात्मनि जो कृष्ण, अखिल रसामि सिंधु जो कृष्ण है, उनमें इनका रूढ़ भाव महाभाव से भी अधिक रूढ़ अधिरूढ़ और कहां कहां तक ये मदनक्य भाव तक है। ये ब्रह्म जन्म से लाभ क्या है, या ब्राह्मण से या ब्रह्मा के जन्म से? यदि भगवान की कथा में रस जिसको नहीं है, ब्रह्मजन की वो ब्रह्म जन की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। कीट जन्म में भी हो तो दास, कीट जन्म वैष्णव का, ऐसे जो रसिक वैष्णव हैं उनका संग मिल जाए तो हम जैसे भी आते हैं, और हम इतने मूर्ख हैं हम लोग ऐसे वैष्णव का संग मिलने पर भी उनका संग छोड़ करके घर में विवाह करने के लिए जा रहे हैं, वो अधिक रस भोग करने के लिए। दुर्भागा बोलो, ऐसा कम मत सोचो, रहो सुनो, नहीं सुनते हो तभी समझो, नहीं समझ रहे तभी बैठो। इसलिए और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रेमा व्यजस्त्रियो परिचरी व्यभिचार दुष्टवा रूढ़ भावा नन्नो नन्नो अरे कहां इन गोपियों का रूढ़ भाव कृष्ण के प्रति, और कहां ये स्त्रियां लौकिक स्त्रियां, कहां गोपियों का रूढ़ भाव? प्रेमा बने चाहिए वृंदावन में विचरण करने वाली, कुंजों कुंजों में विचरण करने वाली, कृष्ण के साथ में रमण करने वाली, विहार करने वाली गोपियां, और घास अरुंधति और ये सब जो प्रतिप्रता सुरमणी है, कहां ये? और लोगों की तो बात ही क्या। मैं क्या व्यभिचार दुष्ट व्यभिचार, व्यभिचार के लिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या व्याख्या की? अभिचार भी विशेष रूप से कृष्ण से विहार करने वाली गोपियां जो हैं, करने वाली जो गोपियां ये धन्य है। कृष्ण का ऐसा ही एक प्रभाव है,
कहते हैं
कृष्ण का ऐसा एक स्वरूप है, अद्भुत महिमा है। कैसी? कि जैसे औषधि का प्रभाव नहीं जानने से अथवा मणि का स्वभाव नहीं जानने से भी, तीनों का और नहीं जानने से भी उसका सेवन करने से वो ऐसा फल मिल जाता है, ऐसे कृष्ण का जो सेवन करेगा वो भले व्यभिचारी हो, लौकी कुब्जा जैसे भी हो, तो भी वो महान उन्नत बन जाए। कुब्जा में कोई गुण नहीं वैसा विशेष, किंतु कृष्ण के प्रति उसकी जो निष्ठा हुई कृष्ण से अतिरिक्त और दूसरों के प्रति नहीं, इसलिए उनको साधारणी नायिका भी कहा। वो कृष्ण के वजह, कंस के साथ में थी तब तक नहीं हुआ कुछ, कृष्ण के साथ। कोई व्यभिचारी स्त्री भी यदि कृष्ण से संबंधित हो जाती है तो उसका व्यभिचार कहां खत्म हो करके परम उन्नत हो जाता है। और आशाम हो चरणे गोपियों ने जिस प्रकार से रास स्थली में, जिस प्रकार से कृष्ण ने गोपियों के गले में अपना हाथ डालकर गोपियों को वो प्रसाद दिया जो कभी किसी को नहीं दिया, लक्ष्मी और रुक्मिणी सत्यभामा किसी को नहीं दिया, इसलिए फिर कहते हैं आशाम हो चरण रेण। वृंदावन में गोपियों की चरण की रज को सेवन करने के लिए, उसे अभिषिक्त होने के लिए ब्रज में यदि लता गुल्म इत्यादि भी हो जाऊं तो हमारा जीवन, जिसको श्रुतियां भी करोड़ों वर्ष से खोज करके आज तक नहीं पाई श्रुतियां भी, और ये गोपियां क्या कर रही हैं? ऐसे गोपियां धन्य हैं। अगले श्लोक में वो कर रही क्या? अब इसे गोपियों की महिमा और क्या हो सकती है? ब्रह्मा इत्यादि, लक्ष्मी इत्यादि, ये लोग कृष्ण की जिस महान कृपा को नहीं प्राप्त हो सके, उनके चरणों का चिंतन करते हैं और चरणों का चिंतन भी उनके मन में नहीं आता, और गोपियां उस उनके चिंतनीय चरण का कमलों को अपने बस्ताक्षल में रख करके अपने हृदय के ताप को, विरह ताप को दूर करती है। इससे बढ़ करके और गोपियों की क्या महिमा हो सकती है? और इसीलिए मैंने क्या किया, बंदे हम नंद गोपी न मैं गोपियों की चरणों की वंदना करता हूँ, नहीं चरण की वंदना नहीं, एक धूली कणा की दूर से मैं वंदना करता हूँ, एक धूली कणा। इसलिए उनके मुख से जो भगवान की कथाएं निकली हैं विरह में, वो जगत पवित्र करने वाले। तव कथा मृतम तीवनम कर्म करके चौक उठे, कहां वो सो रहे थे विरह में व्याकुल होकर, महाराज प्रताप रूप से उठ करके एकदम आलिंगन में बद कर, मैं भिखारी तुमको क्या दूं, ये आलिंगन ही हमारा सर्वस्व है, भिखारी और नहीं, और वो प्रेम में पागल। ऐसी गोपियों की महिमा है, उनके मुख से जो निकली भ्रमर गीत निकला, गोपी गीत निकला और गीत जो निकली, ये सब भागवत के ये रत्न हैं, भागवत रूपी समुद्र में मंथन करके सुखदेव गोस्वामी जी ने निकाला। तो ये सब मैंने महिमा कही है, अब इससे अधिक मैं महिमा कुछ नहीं कर सकता गोपियों।
Remembering all this that he experienced in Vrindavan, Uddhava sent to Narad and to the others who were present. O Narad, there in Vrindavan, I drowned in a great, great, unlimited ocean of happiness. Seeing their great prema and hearing of their bitter heart for Krishna, I tried my best to glorify them, but I don't think I could do very well. Out of this universe, the earth is fortunate. Why? Because Vrindavan is present here. And the Vrindavan is fortunate, why? Because of the presence of the gopis. And there, in Srimad Bhagavatam, would have glorified the gopis. Govindam evam akramatam rudabhava kitrama jama kudrashasya. Oh, the gopis are very much glorious because they have achieved rudabhava towards Krishna, who is akalatmam, the soul of everyone. Therefore, what is the use of even taking birth as Brahma if one is against hearing such topics? Their bhava is so glorious. Tat bhava viyo muninam pranamane. Their bhava is so much wonderful that those who are afraid of material existence, viyo, those who are munis, free from all types of material desire. And what to speak of them, even myself desire to attain that type of love towards Krishna that the gopis experienced. Guru Maharaj is then giving commentary. We are such foolish persons because we are leaving the nectar of this type of topics and this type of prem. And we think if we will marry, then we can enjoy more rasa, more happiness. But this is a very poor idea. So we should simply sit and hear. And if we don't understand, then just sit and hear again and again and again. Then one day we can understand that something. So Uddhava again was saying, alas, Vyabhichari dusta, so many meanings. Vyabhichari means, Uddhava also thinking, if one is a Vyabhichari, if one's character is very, very poor, very bad, for example, if a woman leaves her husband, or even if someone is like Kubja, who likes Sadanirati towards Krishna, all types of disqualifications, but by approaching Krishna, one will be purified. Therefore, like money, like mantra, like ocean, like a jewel, or like a mantra, or like a medicinal herb. If somehow you come in contact with these three substances, even if you are unaware of the power that these substances possess, you will definitely be affected. So same as the hearing of these topics, which prayer towards Krishna. Anyhow we hear in whatever condition, we will become purified. So Uddhava was saying we are very. The mercy that Krishna gave to the gopis could not be received by anyone else, including very attractive girls in this world. What to speak of them? Even Lakshmi, Yavai Sri Achikam, Ajidivya, Atma Kama, Yogeshwari, Apanyat, Apanyarasa Goshnam. Even great perfected munis, even powerful personalities like Brahma and like Shiva, in their very greatest attempts at meditation, with great difficulty, sometimes they may be able to think of the footdust of Krishna. And even then, sometimes they are not successful. But how much greater the prema of the gopis? They are not satisfied simply by meditating on the footdust of Krishna. But those same lotus feet that are meditated on by the best of perfected personalities, the gopis holding those same lotus feet on their breasts, in this way becoming free from all their separation from Krishna. Vande nanda brajasrinam madhavenam riksasam yaso harikatam hitam punami bhavate trayam. Uddhava continued that all glories to brajasrinam, all glories to the gopis of Vrindavan, all glories. There, if one, they are so much powerful because they are always talking about Krishna. Therefore, with great care and attention, I worship only one speck of dust present on the feet of the gopis. So one speck of dust can only be present on one gopi. So that is the glorious Srimati Radhika. So Mahu used to taste all these moons. After Ratha Yatra, when Mahu was lying down in the garden, Maharaj Pratapurya disguised himself like an ordinary Vaishnava and went, and while massaging the feet of Mahu, he sang these verses of Gopi. Tapakatam ritam tapajivanam When Madhu heard this, Madhu became ecstatic and he stood up and said, "Oh, unfortunately I am simply a beggar, a sannyasi, therefore I have no wealth to give you. The only wealth I can give you is my embrace." So he embraced Pratap Rudra Maharaj, and Pratap Rudra Maharaj, by the mercy of Madhu, he also drowned that prem. So this Srimad Bhagavatam is like an ocean. And Sukhinath Goswami, he churned that ocean very hard. And from the bottom of that ocean there were some very precious jewels. Daily, glorification of the gold is given in the in the five chapters of the Bhagavatam, especially Sri Gopiji, Brahmaji, Panaji, like this. We're very fortunate to hear all these things. These are like the jewels of the Srimad Bhagavatam. Who can glorify the Gopis more than this?
ये तो हमने पहले कहा था ना, बृहद भागवतम में पाठ किया था, तीन बार हो गया, तो अधिक सुन करके क्या करेंगे? कल से वो कृष्ण का ये सभी वक्ता लोग कृष्ण के तत्व के संबंध में है? जैसे रूप गोस्वामी का हुआ, बलदेव जी का हुआ, और कृष्ण का नहीं होगा तो क्या करें? यही हो,
यही
होना भी चाहिए। अच्छा, कल का कर करते परसों से ऑल शुड बी प्रिपेयर टू स्पीक ऑन कृष्ण तत्व, कृष्ण रस, कृष्ण भक्त, ऑल राधा तत्व ऑन नहीं कृष्ण एवरीथिंग कृष्ण, तो यू शुड बी प्रिपेयर। I can ask anyone to understand.
Ekirtan.
Radha ji ka ya gopiyon ke virah ke sambandh mein ya Uddhav ji ke sambandh mein kuch ho to bolo.
Murkh hai hum log, aise vaishnavon ka sang milne par bhi unka sang chhod karke घर में विवाह करने के लिए जा रहे हैं, वो अधिक रस भोग करने के लिए। दुर्भागा बोलो, ऐसा कम मत सोचो, रहो, सुनो, नहीं सुनते हो तभी समझो, नहीं समझ रहे तभी बैठो।
इसलिए और कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं? प्रेमा ब्रजस्त्रियो अरे कहां इन गोपियों का रूढ़ भाव कृष्ण के प्रति, और कहां ये स्त्रियां लौकिक स्त्रियां, कहां गोपियों का रूढ़ भाव? प्रेमा बने चाहिए वृंदावन में विचरण करने वाली, कुंजों कुंजों में विचरण करने वाली, कृष्ण के साथ में रमण करने वाली, विहार करने वाली गोपियां, और कहां अरुंधति और ये सब जो प्रतिपर्ता सुरमणी है, कहां ये? और लोगों की तो बात ही क्या। व्यभिचार
के लिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या व्याख्या की? अभिचार भी विशेष रूप से कृष्ण से विहार करने वाली गोपियां जो हैं, आने वाली जो गोपियां ये धन्य है। कृष्ण का ऐसा ही एक प्रभाव है, तो कृष्ण का ऐसा एक स्वरूप है, अद्भुत महिमा है, कैसी कि जैसे औषधि का प्रभाव नहीं जानने से अथवा मणि का स्वभाव नहीं जानने से भी, तीनों का और नहीं जानने से भी उसका सेवन करने से वो ऐसा फल मिल जाता है, ऐसे कृष्ण का जो सेवन करेगा वो भले व्यभिचारी हो लौकिक कुब्जा जैसे भी हो तो भी वो महान उन्नत नहीं है। कुब्जा में कोई गुण नहीं वैसा जैसे, किंतु कृष्ण के प्रति उसकी जो निष्ठा हुई कृष्ण से अतिरिक्त और दूसरों के प्रति नहीं, इसलिए उनको साधारणी नायिका भी कहा। वो कृष्ण के बदले कंस के साथ में थी तब तक नहीं हुआ कुछ, कृष्ण के साथ। कोई व्यभिचारिणी स्त्री भी यदि कृष्ण से संबंधित हो जाती है तो उसका व्यभिचार कहां खत्म हो करते हैं, परम उन्नत हो जाती है। और आशाम हो चरणे गोपियों ने जिस प्रकार से रास स्थली में जिस प्रकार से कृष्ण ने गोपियों के गले में अपना हाथ डालकर गोपियों को वो प्रसाद दिया जो कभी किसी को नहीं दिया, लक्ष्मी और रुक्मिणी सप्तभामा किसी को नहीं दिया, इसलिए फिर कहते हैं आशा महो चरण वृंदावन में गोपियों की चरण की रज को सेवन करने के लिए उसे अभिषिक्त होने के लिए ब्रज में यदि लता गुल्म इत्यादि भी हो जाऊं तो हमारा जीवन, जिसको श्रुतियां भी करोड़ों वर्ष से खोज करके आज तक नहीं पाई श्रुतियां भी, और ये गोपियां क्या कर रही है, ऐसे गोपियां धन्य हैं। अगले श्लोक में वो कर रही क्या अब इसे गोपियों की महिमा और क्या हो सकती है, ब्रह्मा इत्यादि लक्ष्मी इत्यादि ये लोग कृष्ण की जिस महान कृपा को नहीं प्राप्त हो सके, उनके चरणों का चिंतन करते हैं और चरणों का चिंतन भी उनके मन में नहीं आता, और गोपियां उस उनके चिंतनीय चरण का कमलों को अपने बस्तक्षल में रख करके अपने हृदय के ताप को विरह ताप को दूर करती है। इससे बढ़ करके और गोपियों की क्या महिमा हो सकती है। और इसीलिए मैंने क्या किया, बंदे हम नंद गोपी न मैं गोपियों की चरणों की वंदना करता हूँ, नहीं चरण की वंदना नहीं, एक धूली कणा की दूर से मैं वंदना करता हूँ, एक धूली कणा। इसलिए उनके मुख से जो भगवान की कथाएं निकली हैं विरह में वो जगत पवित्र करने वाले, तव कथा मृतम जीवनम कविवीरितम कल्प साधम रमणम कलम श्रीमदागतम भुवि वीर्यम भूमिका। महापुरुष सुन करके चौंक उठे, कहां वो सो रहे थे विरह में व्याकुल होकर, महाराज प्रताप रूप से उठ करके एकदम आलिंगन में बद कर, मैं भिखारी तुमको क्या दूं, ये आलिंगन ही हमारा सर्वस्व है, भिखारी और नहीं, और वो प्रेम में पागल। ऐसी गोपियों की महिमा है, उनके मुख से जो निकली भ्रमर गीत निकला, गोपी गीत निकला और वेणु गीत जो निकली, ये सब भागवत के ये रत्न हैं, भागवत रूपी समुद्र में मंथन करके सुखदेव गोस्वामी जी ने निकाला, तो ये सब मैंने महिमा कही है। अब इससे अधिक मैं महिमा कुछ नहीं कह सकता गोपियों।
Remembering all this and the experience in Vrindavan, Uddhav sent to Narada and the others who were present. O Narada, there in Vrindavan, I drowned in a great, great, unlimited ocean of happiness. Seeing their great prema and the hearing of their bitter heart for Krishna. I tried my best to glorify them, but I don't think I could do very well. Out of this universe, we are this fortunate. Why? Because Vrindavan is present here. And the Vrindavan is fortunate. Why? Because of the presence of the gopis. And there in Srimad Bhagavatam, would have glorified the gopis. Govindam evam akhilamatma rudabhavam krama charman krasjasas. All the gopis are very much glorious because they have achieved rudabhav towards Krishna, who is akhilatmam, the soul of everyone. Therefore, what is the use of even taking birth as Brahma if one is against hearing such topics? Their bhav is so glorious. Tatvav viyo muninam pranamane. Their bhav is so much wonderful. Those who are afraid of material existence, viyo. Those who are munis, free from all types of material desire. And what to speak of them, even myself desire to attain that type of love towards Krishna that the gopis experienced. Guru Maharaj has been giving commentary. We are such foolish persons because we are leaving the nectar of this type of topics and this type of friend. And we think if we will marry, then we can enjoy more rasa, more happiness. But this is a very poor idea. So we should simply sit and hear. And if we don't understand, then just sit and hear again and again and again. Then one day we can understand that something. So Uddhava again was saying, alas, Vyabhichari Dushta. So many meanings. Vyabhichari means Uddhava also thinking. If one is a Vyabhichari, if one's character is very, very poor, very bad, for example, if a woman leaves her husband, or even if someone is like Kubja, like Sarani runs towards Krishna, all types of disqualification. But by approaching Krishna, one will be purified. Therefore, like money, like mantra, like Alshani, like a jewel, or like a mantra, or like a medicinal herb. If somehow you come in contact with these three substances, even if you are unaware of the power that these substances possess, you will definitely be affected. The same as the hearing of these topics, from this prayer towards Krishna. Anyhow we hear in whatever condition, we will become purified. So Uddhava was saying, we are very, the mercy that Krishna gave to the gopis could not be received by anyone else, including very attractive girls in this world. What to speak of them? Even Lakshmi, Yavai Sri Achitam, Ajitavir, Atma Kama, Yogeshwari, Yamaviya, even great perfected munis, even powerful personalities like Brahma and like Shiva, in their very greatest attempts at meditation, with great difficulty, sometimes they may be able to think of the foot dust of Krishna. And even then, sometimes they are not successful. But how much greater the prema of the gopis? They are not satisfied simply by meditating on the foot dust of Krishna. But those same lotus feet that are meditated on by the best of perfected personalities, the gopis holding those same lotus feet upon their breasts, and this way becoming free from all their separation from Krishna. Bande nanda brajasrinam madhavenam riksasam yaso harikatam gitam purnati bhavate trayam. Uddhava continued that all glories to brajasrinam, all glories to the gopis of Vrindavan, all glories. They are so much powerful, because they are always talking about Krishna. Therefore, with great care and attention, I worship only one speck of dust present on the feet of the gopis. So one speck of dust can only be present on one gopi. So that is the glorious Srimani Radhika. So Mahaprabhu used to taste all these moons. After Ratha Yatra, when Mahaprabhu was lying down in the garden, Maharaj Pratapurya disguised himself like an ordinary Vaishnava and went. And while massaging the feet of Mahaprabhu, he sang these verses of Gopi Ji, Tavakatam Ritam, Tapajivanam, Kavitayimasam, Kalmasavaha. When Mahaprabhu heard these, Mahaprabhu became ecstatic and he stood up and said, oh, unfortunately, I am simply a beggar, a sannyasi, therefore I have no wealth to give you. The only wealth I can give you is my embrace. So he embraced Pratapurja Maharaj, and Pratapurja Maharaj, by the mercy of Mahaprabhu, he also drowned in that prem. So this Srimad Bhagavatam is like an ocean. Sukhinath Goswami, he churned that ocean very hard. And from the bottom of that ocean, there were some very precious jewels. Daily, glorification of the Gopis is given in the Panchakrasa, in the five chapters of the Bhagavatam, especially Sri Gopi Gita, Brahmaji. And I did like this. We're very fortunate to hear all these things. These are like the jewels of the Srimad Bhagavatam. Who can glorify the Gopis more than this?
ये तो हमने पहले कहा था ना, बृहद भगवता में बात किया था, तीन बार हो गया, तो अधिक सुन करके क्या करेंगे। कल से वो कृष्ण का ये सभी वक्ता लोग कृष्ण के तत्व के संबंध में है? जैसे रूप गोस्वामी का हुआ, बलदेव जी का हुआ, और कृष्ण का नहीं होगा तो क्या करें? यही हो,
यही
होना भी चाहिए। अच्छा, कल का कर करते परसों से ऑल शुड बी प्रिपेयर टू स्पीक ऑन कृष्ण तत्व, कृष्ण रस, कृष्ण भक्त, ऑल राधा तत्व ऑन कृष्ण तत्व, एवरीथिंग कृष्ण। तो यू शुड बी प्रिपेयर। I can ask anyone to understand. राधा जी का या गोपियों के विरह के संबंध में या उद्धव जी के संबंध में कुछ हो तो बोलो।